It's a great blessing to be with you again this morning.
आप लोगों के साथ इस सुबह रहना एक बड़ी आशीष की बात है.
God is good.
परमेश्वर भला है.
His mercies are new every morning.
उसकी दया हम पर हर सुबह नई बनती है.
It's a great privilege to study the word of God together.
परमेश्वर के वचन को साथ में पढ़ना ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है.
If you want to be useful,
यदि आप उपयोगी बनना चाहते हैं,
if you want to build true churches,
अगर आप सच्ची कलीसियाएं की स्थापना करना चाहते हैं,
if you want to bear true fruit,
अगर आप सच्चा फल लाना चाहते हैं,
you must pay attention to two things.
तो आपको दो चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है.
Your life must be holy.
आपका जीवन पवित्र होना चाहिए.
And your doctrine must be clear.
और आप जो सिद्धांत है वो बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए.
And if you want to be holy,
और अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं,
and if you want to know right doctrine,
और अगर आप सही सिद्धांत को जानना चाहते हैं,
you must be willing to pay the price.
तो आपको कीमत चुकाने के लिए तैयार होना है.
If you are a preacher,
अगर आप एक प्रचारक हैं,
if you are a pastor,
अगर आप एक पासवान हैं,
if you want to be a preacher,
अगर आप प्रचारक बनना चाहते हैं,
if you believe God has called you to be a preacher,
अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपको प्रचारक बनने के लिए,
you must understand this.
ये बात समझना है.
God's requirements for you are much higher.
परमेश्वर की आपसे मांगे या जरूरत आवश्यकता बहुत ऊंची है.
Paul said to suffer hardship as a good soldier of Christ Jesus.
पौलुस कहता है यीशु मसीह के एक अच्छे सैनिक के समान दुख उठाओ.
You must be willing to pay the price.
आपको कीमत चुकाने के तैयार होना है.
To pursue God.
परमेश्वर के पीछे पड़े रहिए.
And to study truth.
और उसकी सत्य को जानिए.
Yesterday we talked about the preacher's doctrine.
कल हमने बात किया प्रचारक के सिद्धांतों के बारे में.
You must be willing to study theology all your life.
आपको अपने संपूर्ण जीवन भर धर्म विज्ञान को पढ़ने के तैयार होना है.
We are talking about the doctrine of salvation.
हमने उद्धार के सिद्धांत के बारे में बात किया.
One day we cannot cover this.
एक दिन में हम उसका पूरा अध्ययन नहीं कर सकते.
You must study the gospel all of your life.
आपको सुसमाचार अपने संपूर्ण जीवन तक अध्ययन करना है.
We talked about the necessity of salvation.
हमने उद्धार के आवश्यकता के बारे में बात किया.
Man's sinful condition.
मनुष्य की पापी स्थिति के बारे में.
We talked about the foundation of salvation.
हमने उद्धार के स्रोत्र या बुनियाद के बारे में बात किया.
God's unconditional election.
परमेश्वर के बिना शर्त के चुनाव के बारे में बात
किया. Then we talked about the accomplishments of salvation.
फिर हमने बात किया था उद्धार की उपलब्धि या उद्धार कैसे हुआ है.
क्राइस्ट परफेक्ट ओबीडियंस
और मसीह के संपूर्ण पूरी तरह से सिद्ध आगे कार्यकाल.
इन हिज लाइफ एंड इन हिज डेथ
उसके जीवन में और उसके मृत्यु में.
इन हिज लाइफ ही फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ
उसने अपने जीवन के द्वारा व्यवस्था की जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा किया.
इन हिज डेथ ही सफर्ड द कर्स ऑफ द पेनल्टी ऑफ द लॉ
और अपने मृत्यु में व्यवस्था के जो शाप थे उस शाप के दंड को पूरा किया.
That's where we ended yesterday.
और कल हमने वहीं पर समाप्त किया.
I want to add just a few more things to this point.
और इस बिंदु पे मैं एक दो बातें और जोड़ना चाहता हूँ.
By Christ's obedience on the to the cross.
मसीह की आज्ञाकारिता क्रूस तक जाने के द्वारा.
His obedience accomplished three things.
उसकी आज्ञाकारिता ने तीन चीजें पूरी की.
Redemption.
हम छुटकारा.
Propitiation
हमारे बदले परमेश्वर के क्रोध को क्षमा करना.
And reconciliation
और फिर परमेश्वर से मेल मिलाप.
I want to survey those very quickly
और ये तीन बातों को हम जल्दी से सर्वेक्षण करेंगे.
I want to look at a few basic verses
और कुछ बुनियादी वर्षों को देखेंगे.
And then to quickly summarize their meaning
फिर उनके अर्थों को हम जल्दी से सारांश भी कर देंगे.
I know you are perhaps familiar with this.
मुझे मालूम है कि आप शायद इसे जानते हैं पहले से.
But my responsibility is to try to teach the accomplishments of Jesus Christ.
लेकिन मैं आपको यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है वो बताना चाहता हूँ.
He was obedient unto death.
वो मृत्यु तक की आज्ञाकारी बना रहा.
And by that obedience he accomplished three things.
और उस आज्ञाकारिता के द्वारा उसने तीन चीजें पूरी की.
Redemption, propitiation, and reconciliation.
छुटकारा परमेश्वर के क्रोध को शांत करना और उससे मेल मिलन कराना.
Now let's look at that very quickly.
आइए हम जल्दी से उसको देख लें.
In the book of Romans,
रोमियों की पुस्तक में
chapter 3,
तीसरा अध्याय.
We're talking about redemption.
हम छुटकारे की बात कर रहे हैं.
I just want to read some verses and then summarize the meaning.
मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा फिर उसके बाद उसके अर्थ को कष्ट सारांश आपको बताऊंगा.
verse 23.
23 पद.
All have sinned, fallen short of the glory of God.
परंतु सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं.
And we are justified as a gift by His grace.
और उसके अनुग्रह से ही छुटकारे द्वारा मसीह में चेतन में धर्मी ठहरा जाते
हैं. We are declared righteous not according to our works.
हम अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा जाते.
But according to His grace.
लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा.
How was it provided?
कैसे दिया गया हमें?
Through the redemption which is in Christ Jesus.
यीशु मसीह में ही छुटकारे के द्वारा.
By Jesus' death.
यीशु की मृत्यु के द्वारा.
And our union with Him.
और हमारे उससे मिलन के द्वारा.
He accomplished a redemption.
उसने एक छुटकारे का काम को पूरा किया.
And it produces benefits for us.
और वो हमारे लिए ये लाभ को उत्पन्न करता है.
Look in the book of Galatians.
गलतियों की पत्री में देखिए.
In chapter 3.
और तीसरे अध्याय में.
We're talking about redemption.
और यहाँ पे हम छुटकारे के बारे में अभी बात कर रहे हैं.
You must study this all of your life.
आपको इसको अपने संपूर्ण जीवन भर अध्ययन करना है.
Chapter 3,
तीसरा अध्याय,
verse 11.
11 पद.
Now, that no one is justified before the law is evident.
और जो लोग व्यवसाय कामों पे निर्भर हैं वो तो स्पष्ट है.
Verse 13.
13 पद.
Christ redeemed us from the curse of the law.
परमेश्वर मसीह ने हमें व्यवस्था के शाप से छुड़ा दिया है.
We were under the law.
हम व्यवस्था के अधीन थे.
We were required to pay a penalty.
हमें एक दाम चुकाने की आवश्यकता थी.
Christ was born under the law.
मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ.
And by his death.
और उसकी मृत्यु के द्वारा.
He brought us out from under the law.
वो हमें व्यवस्था के अधीन से बाहर लेके आए.
And if you are a Christian.
और अगर आप मसीही हैं,
you are not under the law,
आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं,
you are under grace,
और आप अनुग्रह के अधीन हैं,
the law is not over your head,
जो व्यवस्था है आपके सर के ऊपर नहीं है,
it is now written in your heart,
वो अब आपके हृदय पे लिखा हुआ है,
the law is no longer your enemy,
अब व्यवस्था आपका दुश्मन नहीं है,
the law is your friend,
अब वो आपका मित्र बन गया है,
it is written in our hearts to motivate us,
वो अब हमारे हृदय पे लिखा है ताकि हमें प्रेरित करे,
and it is under our feet to guide us,
हमारे पैरों के तले है ताकि वो हमें निर्देश दे सके.
We are no longer under the law.
वो अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं.
Look in the book of Ephesians.
इफिसियों के पत्र में देखिए.
And chapter 1.
और पहला अध्याय.
Verse 7.
सातवां पद.
In him we have redemption through his blood.
हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिला है.
And that means the forgiveness of our trespasses.
इसका मतलब हमारे अपराधों की क्षमा.
And it's according to His grace, not our works.
और वो उसके अनुग्रह के धन के अनुसार है, हमारे कामों की वजह से नहीं.
In union with Jesus Christ,
मसीह से मिलन के द्वारा,
we have been redeemed.
हम छुड़ाए गए हैं.
By His blood,
उसके लहू के द्वारा,
resulting in the forgiveness of sins.
हमारे पापों की क्षमा का परिणाम है.
And its source is the grace of God.
और उसका स्रोत वो है परमेश्वर का अनुग्रह.
Look in the book of Titus.
और तीतुस की पत्री में देख लीजिए.
We're surveying this very quickly.
हम इसको बहुत जल्दी से देख रहे हैं.
And chapter 2.
दूसरा अध्याय.
We're talking about redemption.
हम छुटकारे की बात कर रहे हैं.
Verse 14.
14 पद.
Look at the verse yourself.
आप स्वयं देखिए इस पद को.
He gave himself for us.
उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया.
For what purpose?
किस लिए?
To redeem us from every lawless deed.
कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले.
Christ just doesn't deliver us from the guilt of sin.
परमेश्वर हमें सिर्फ पाप के दोष से ही नहीं छुड़ा लेता.
He delivers us from the power of sin.
वो हमें पाप के सामर्थ्य से भी छुड़ाता है.
And the grammar means to separate us from every lawless deed.
और जो वहाँ पे व्याकरण है उसका ये अर्थ है कि जो भी अधर्म या जो भी गलत काम है उनसे हमें अलग करने की बात है.
And then to purify himself of people for his own possession.
और फिर अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए एक लोगों को वो शुद्ध कर दे.
And what is their characteristic?
और फिर उनके गुण क्या है, चरित्र
क्या है? They are zealous for good deeds.
वो अच्छे कामों के लिए जोश से भरे हुए हैं.
Now look at First Peter.
और पहले पत्रस को देख लीजिए.
One last verse.
आखिरी पद.
Chapter 1.
पहला अध्याय.
We're talking about redemption.
हम छुटकारे की बात कर रहे हैं.
Verse 18.
18 पद. पहला अध्याय 18 पद.
You are not redeemed with perishable things like silver or gold.
लेकिन तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है.
Verse 19.
19 पद.
But with precious blood.
परंतु बहुमूल्य लहू के द्वारा
as of a lamb unblemished and spotless the blood of Christ
जो ऐसा निष्कलंक मेमना जो मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है
it wasn't the payment of money
ये पैसे के द्वारा नहीं हुआ है पैसे
it was the payment of blood
वो खून के देने के द्वारा हुआ
not just any man's blood
केवल किसी भी व्यक्ति के लहू के द्वारा नहीं
but the blood of Christ
लेकिन मसीह के लहू के द्वारा
now your blood and my blood is infected with sin
आपका खून और मेरा खून जो है पाप से उसका संक्रमित हो चुका है
but the blood of Christ was pure it was clean
लेकिन मसीह का जो खून है लहू है वो पवित्र था
when that blood came out of his body
जब उसके शरीर से देह से वो खून बाहर
and it went down the cross
और क्रूस से नीचे होकर के गया
and it fell upon the ground
और उस जमीन भूमि पे गिरा
the world had never seen blood like that
संसार ने कभी उस तरह का लहू नहीं देखा था
the blood of bulls and goats cannot cleanse from sin
गायों और बैल के जो खून लहू है वो पापों को नहीं धो सकते
your blood is defiled and corrupt
आपका जो लहू है वो अशुद्ध है और वो भ्रष्ट हो चुका है
that blood was clean and pure
लेकिन यीशु का लहू पवित्र और शुद्ध था
now that blood its physical blood has long since evaporated into the earth and gone
वो जो शारीरिक जो लहू था उस समय जो वहां था वो अब तो बहुत समय पहले जा चुका
है but the influence of that blood
लेकिन उस लहू का जो प्रभाव
the power of that blood
उस लहू का सामर्थ्य
the authority of that blood
उस लहू के अधिकार
the cleansing of that blood
उस लहू के द्वारा धुलना
last forever
वो हमेशा हमेशा तक
and in heaven there is a man
और स्वर्ग में एक आदमी है
and he has five marks on his body
उसके शरीर पे पांच चिन्ह हैं
and those marks are the only thing in heaven that was made by man
और उस और केवल एक ही चीज के द्वारा उन पांच चिन्हों का बनाया गया है
the marks of the body of Christ
वो मसीह के चिन्हों के द्वारा
and he is forever the slain lamb
और वो हमेशा हमेशा के लिए घात किया हुआ मेमना है
and so we ought to remember his sacrifice
तो हमें उसके बलिदान को याद रखना है
so that's why he instituted the Lord's Supper
और इसीलिए उसने प्रभु भोज की जो मेज है उसको आरंभ किया
that we would live at the foot of the cross
ताकि हम उस क्रूस के तले जिएं
and we would remember his sacrifice
और हम उसके बलिदान को याद रखें
to cleanse us
हमें शुद्ध करने के लिए
to motivate us
हमें प्रेरित करने के लिए
and to move us to follow him
और हमें इस बात के लिए बांध करने के लिए कि हम उसके पीछे चलें
now if we had more time we would do a long survey of teaching on redemption
और अगर हमारे पास और समय होता तो हम छुटकारे की शिक्षा और लंबे समय
we would have to go back to the old testament and survey its meaning
हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा उसके अर्थ को समझने के लिए
we would have to move through the new testament to see its various thoughts
हमें नए नियम में जाना पड़ेगा उसके विभिन्न प्रकार के विचारों को समझने के लिए
But when we talk about redemption, it means basically three things.
लेकिन जब हम छुटकारे की बात करते हैं तो उसका तीन अर्थ होते हैं
If you are listening to these verses,
अगर आप इन पदों को सुन रहे हैं
you recognize redemption has three things.
तो छुटकारे के दो तीन बातें होती है
Number one,
पहली बात
the payment of a price.
जो एक कीमत है उसका चुकाया जाना
Number two,
दूसरी बात
the release from bondage.
और बंधुआई से छुटकारा छूट जाना
Number three,
तीसरी बात
to make one's own possession.
और फिर ना सिर्फ इतना लेकिन किसी को अपना बना लेना
This is the basic meaning of redemption.
और यही है छुटकारे का साधारण अर्थ
Christ paid the price.
मसीह ने कीमत चुका दी है
What was the price?
और कीमत क्या थी
His own life.
उसके स्वयं का जीवन
His own blood.
उसका स्वयं का लहू
What did it do?
उसने क्या किया
It freed us from sin.
उसने हमें पाप से छुड़ा लिया
From the guilt of sin.
पाप के दंड से
And from the power of sin.
और पाप के सामर्थ्य से
And one day completely from the presence of sin.
और एक दिन संपूर्णता से पाप की उपस्थिति से
And he bought us to be his own possession
aur usne hame khareed liya taki hum uske ban jaye
you know the illustration from the first century
aur aapko malum hai na pehli shatabdi se ye udhaaran
in the roman world they had the slave market
aur jo romi sansar tha wahan pe दासों का बाजार लगता था
they would bring slaves to the market
और वो लोग जो दास लोग थे गुलाम लोग
they would put them up on the stage upon the block
उनको बाजार में लाते थे और इस तरह से ऊंचे स्टेज पे खड़ा कर देते थे
and they were in bondage
और वो लोग बंधुआई में थे
they were in the slave market
वो लोग उस दासों के बाजार के गुलाम
बाजार someone would come along
और कोई आता था वहां पे
and he would pay the price
और फिर वो उस दास के लिए किसी दास के लिए दाम चुकाता
था and he would buy that slave
और फिर उस दास को खरीद लेता था
And then he would take off the chain.
और फिर उस गुलाम के हाथ से जो जंजीरें होती थी उसको निकाल देता था.
But God did more than that for us.
लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए उससे भी बढ़ करके किया.
Christ brought us out of the slave market.
परमेश्वर ने हमको गुलामों के बाजार से बाहर निकाला.
He freed us from the bondage of sin.
उसने हमें पापों की बंधनों से छुड़ा दिया.
Then he brought us into his own home.
लेकिन उसके बाद उसने हमें छुड़ा करके अपने घर में
ले लिया. He legally adopted us as his own child.
उसने कानूनी तौर पे हमें अपने स्वयं के बेटे बेटे जैसे गोद ले लिया.
And he put a ring on our finger.
और उसने हमारी उंगली पे एक अंगूठी पहना
दी. And he put new clothes upon our back.
और हमारे शरीर पे नए कपड़े डाल दिए.
And he gave us all the privileges and blessings of being a true child.
और एक सच्चे बालक होने के नाते जो भी हमारे जो फायदे थे वो हमें उसने दे दिए.
That is redemption.
यही चुकाना है.
The payment of a price.
एक कीमत को चुकाना.
To bring out of bondage.
और बंधुआई से बाहर लाना.
To make one's own possession.
और ना सिर्फ इतना लेकिन अपने स्वयं के हिस्से में अपना स्वयं का बना
brought us into his family.
उसने अपने परिवार हमको लाना.
I encourage you to go through the Old Testament and the New Testament and to study this truth.
और मैं आपको साइड करूंगा कि आप पुराने नियम में देखिए नए नियम में देखिए और इस सत्य के बारे में और भी अधिक समझने का प्रयास कीजिए.
Now let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता
हूं. Some preachers preach this.
कुछ प्रचारक लोग ये कहते हैं.
We were in bondage to sin.
हम पापों के बंधुआई में थे.
And we were in bondage to Satan.
और हम शैतान के बंधुआई में थे.
Christ paid the price.
मसीह ने दाम चुकाया.
He paid the price to Satan.
उसने शैतान को ये दाम चुकाया.
And Satan released us.
और फिर शैतान ने हमको छोड़ दिया.
Let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ.
Is that true?
क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है?
Who did he pay the price to?
किसने ये मसीह ने किसको दाम चुकाया?
To Satan?
शैतान को.
Or to God?
और पिता को.
Now if somebody comes and teaches that,
अगर कोई यहां पे आके वो बात सिखाए,
you need to understand the truth.
आपको सत्य को समझना है.
And if you don't study real money,
अगर आप सही बात नहीं समझेंगे,
somebody gives you false money,
कोई आपको झूठा शिक्षा देगा,
you'll take it.
आप ले लेंगे उसको.
Somebody comes and says he paid the price to Satan.
कोई आगे कहेगा कि उसने शैतान को कीमत चुकाई है.
What should you say?
तो आपको क्या कहना चाहिए?
You should point to the word of God.
आपको उनको परमेश्वर के वचन की ओर दिखाना चाहिए.
What verse should you be thinking about?
किस पद के बारे में आपको सोचना चाहिए?
You should know your Bible.
आपको अपने बाइबल को ध्यान देना है.
You should correct error.
जो गलती है उसे सही करना है.
You should teach the truth.
आपको सत्य को सिखाना है.
What verse Bible? What book in the New Testament talks most about the sacrifice of Christ?
और कौन सी पुस्तक है पुराने नियम में जो परमेश्वर के बलिदान के बारे में ज्यादा बात करती है? नए नियम में.
They say Hebrews. Mm-hmm. Hebrews.
Ibrahim.
Chapter 9.
Navadhyay.
You must know your Bible.
आपको अपने वचन को जानना है.
Verse 4, verse
14,
verse
13. 13
Look at the verse.
इस पद के 13 पद को देखिए.
The blood of bulls and goats and the sacrifice of a heifer sprinkled those have been defiled, cleansed the flesh.
क्योंकि यदि अशुद्ध लोगों पर बकरों बैलों का लहू तथा कलोर की राख छिड़का जाता है तो देह की शुद्धता के लिए प्रवृत्त करता है.
The blood of animals gave outward ceremonial cleansing.
जो जानवरों के जो लहू थे वो बाहरी केवल एक रीति रिवाज के तौर पे शुद्धता प्रदान करते थे.
Notice verse 14.
लेकिन 14 पद को ध्यान
दीजिए. How much more the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God.
तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा द्वारा परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष चढ़ा दिया गया.
Who did he offer himself to?
किस किस को उसने अपने आप को दे दिया?
Must know your Bible.
आपको अपनी बाइबल को जानना है.
This verse is helpful to answer two questions.
ये पद जो है दो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए लाभदायक है.
When Christ died on the cross,
जब यीशु मसीह क्रूस पे मरे,
was he a polluted, defiled sinner?
क्या वो एक गंदा प्रदूषित पापी था?
What does the verse say?
ये पद क्या कहता है?
He offered himself without blemish to God.
वो ये क्या ये पद कहता है कि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया.
And if someone says he paid the price to Satan,
अगर कोई कहता है कि उसने शैतान को वो दाम चुकाया,
it says he paid to God.
वो ये कहता है कि उसने परमेश्वर को चुकाया था.
And he went into the holy of holies in heaven.
और वो सबसे पवित्र महापवित्र स्थान में गया.
And he appeared before God.
और परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ.
And he set forth himself as that sacrifice.
और उसने अपने आप को उस बलिदान के रूप में रख दिया वहां पे.
Redemption.
छुटकारा
the payment of a price
कीमत का चुकाया जाना
to free from bondage
बंधुआई से छुड़ाना
to make one's own possession
स्वयं की चीज वस्तु बना लेना
and if you have been redeemed
अगर आपको छुड़ा लिया गया
it's not with perishable things like silver or gold
तो वो नाश होने वाली वस्तुओं जैसे सोना चांदी के जैसे नहीं छुड़ाया गया
with precious blood
लेकिन बहुमूल्य लहू के द्वारा
as of a lamb unblemished
और जो मेमना जो निर्दोष है
and he redeemed you from the curse of the law
और उसने आपको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है
the law is gone
अब वो व्यवस्था चली गई है
it's no longer over your head
अब वो आपके सर पे नहीं है
it's written in your heart
वो आपके हृदय पे लिखी है
and it's under your feet
और आपके पैरों के तले है
not over your head to condemn you
आपके सरों के ऊपर नहीं कि आपको दंडित करे
but now under your feet to guide you
लेकिन आपके पैरों के नीचे ताकि आपको निर्देशित करे
thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path
आपका वचन मेरे पैरों के लिए ज्योति है और मेरे मार्ग का निर्देशक है
the obedience of Christ he accomplished redemption
और मसीह की आज्ञाकारिता के द्वारा उसने हमारा छुटकारा
नंबर टू
उपलब्ध कराया
the obedience of Christ there was propitiation
दूसरी बात मसीह की आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर का जो क्रोध हम पे बना हुआ था
let's look at several verses here
और आइए उसके लिए हम कई पदों को देख लें
Romans 3 again
रोमियो तीसरा अध्याय
Verse 24. We're justified by His grace through redemption in Christ.
अनुग्रह से ही उस छुटकारे के द्वारा मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं.
Verse 25. God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith.
परमेश्वर ने उसके लहू पे विश्वास प्रायश्चित ठहराया है.
Does it have that word in Hebrew? In the Greek, the word is propitiation.
जो यहाँ पे जो प्रायश्चित शब्द है, उसका जो इब्रानी जो हिब्रू यूनानी भाषा में है उसका जो शब्द प्रोपिशिएशन का अर्थ यह है कि परमेश्वर का पाप के प्रति जो क्रोध था उसको ठंडा किया जाना
We'll define that more specifically in a moment.
हम उसको अभी और समझाएंगे आगे चलकर
Look in first John.
पहला यूहन्ना
We're talking about propitiation.
और यहाँ पे हम लोग उसी शब्द परमेश्वर की क्रोध को ठंडा करने की बात कर रहे हैं
First John and chapter 4.
पहला यूहन्ना उसका चौथा अध्याय
Verse 10.
दसवां पद.
And this is love.
और प्रेम ये है.
Not that we love God.
कि हमने नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया.
But He loved us.
लेकिन उसने हमसे प्रेम किया.
Sent His Son to be the propitiation for our sins.
उसने हमारे अपने पुत्र को भेजा हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए.
Now if someone preaches this.
Sorry, even here it's not that. They just don't translate that. They just miss it.
Well, tell them that's what the word means.
जब ये इन दोनों जगह प्रायश्चित शब्द आए ना कि हिंदी बाइबल में जो यहाँ पे प्रायश्चित शब्द प्रायश्चित कैसे किस चीज के लिए परमेश्वर का क्रोध जो पाप के प्रति हमारे ऊपर था उसको मसीह ने मरने के द्वारा उस क्रोध को भी शांत किया वो विचार है जिसको हिंदी बाइबल में नहीं पाते हैं
Some people say this.
कुछ लोग ये कहते हैं
When Christ paid the price for our sins,
जब मसीह ने हमारे पापों के दाम को चुकाया,
then God began to love us.
तो फिर परमेश्वर हमसे प्रेम करने लगा.
But what does John say here?
लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा है यहाँ पे?
Because God loved us.
क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया.
He gave His Son.
उसने अपने पुत्र को दे दिया.
Look in chapter 2.
दूसरे अध्याय को देखिए.
And verse 2.
पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय दूसरा पद
Here's the same word in the original Greek.
फिर से वही शब्द है propitiation.
He's a propitiation for our sin, not for ours only, but also for those of the whole world.
वो स्वयं हमारे पापों का प्रायश्चित या propitiation है ना सिर्फ हमारा वरन समस्त संसार के पापों का
I want to give you an assignment here in just a moment.
मैं भी आपको एक गृह कार्य दूंगा थोड़े समय में
But I want to give you a basic definition of this word, this meaning.
और जिस शब्द की बात हम कर रहे हैं अंग्रेजी में प्रोपिशिएशन उस शब्द का हम आपसे एक बात करना चाहते हैं
इट इज एन ऑफरिंग दैट कवर्स सिन
ये एक ऐसा बलिदान है जो पापों को ढांक लेता है
इट इज एन ऑफरिंग दैट सैटिस्फाइज जस्टिस
ये एक ऐसा बलिदान है जो न्याय को शांत करता है
इट इज एन ऑफरिंग दैट रिमूव्स गिल्ट
और ये एक ऐसा बलिदान है जो दोष को हटाता है
द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड
इस शब्द का अर्थ
इज टू कवर
तो उसे ढांक देना
to satisfy,
संतुष्ट करना
and to remove.
और हटा देना
It covers sin,
पाप को ढांकता है.
It satisfies God's justice.
परमेश्वर का जो न्याय है उसको संतुष्ट करता है.
And it removes our guilt.
और हमारे पास जो दोष है उसको हटाता है.
Now look at this verse.
और इस बात को देखिए.
He is the covering for our sins, not ours only, but the whole world.
वो हमारे पापों को ढांकने वाला है, ना सिर्फ हमारे पापों को लेकिन समस्त संसार के पापों को.
He is the satisfaction for our sins.
हमारे पापों के लिए जो संतुष्टि होनी चाहिए थी वो है हमारे पापों के लिए.
Now listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
Some people teach this.
कुछ लोग ये सिखाते हैं.
Jesus died for all men.
यीशु मसीह सारे लोगों के लिए मर गया.
Everyone that ever lived.
सारे लोग जो हमेशा जिए हैं.
Because that's what the verse says.
क्योंकि यही वो बात ये पद कहता है.
He died for the whole world.
वो संसार के सारे लोग के लिए मर गया.
But when we interpret scripture.
लेकिन जब हम वचन को समझते हैं.
Our purpose is this.
हमारा उद्देश्य ये है.
Not what we think the meaning is. Not what we think our the meaning is.
ये नहीं कि हम जो सोचते हैं उसका अर्थ क्या है.
But what is the meaning of the author?
लेकिन वो जो लेखक है उसका क्या अर्थ है.
And a principle of interpretation is this.
और एक अर्थ समझाने का सिद्धांतों का एक सिद्धांत ये है.
We allow scripture to interpret scripture.
और हम वचन को अनुमति देते हैं कि वो वचन को अर्थ समझाए.
Who wrote this verse?
और किसने ये पद लिखा.
John. Who do you think would be the best interpreter to tell us the meaning of this verse?
और अगर यूहन्ना ने इस पद को लिखा है तो क्या सोचते हैं कौन सबसे अच्छा व्याख्या कर सकता है इस पद की यूहन्ना के अलावा.
हाँ
John. लेकिन मनुष्य होते यूहन्ना.
He wrote it.
उसने लिखा.
He ought to be able to tell us its meaning.
तो अगर उसने लिखा है तो वही हमको इस पद का अर्थ समझा सकता है कि नहीं.
Let scripture interpret scripture.
तो एक वचन दूसरे वचन का व्याख्या करें.
Let John interpret himself.
यूहन्ना को स्वयं व्याख्या करने दीजिए.
Now what other book did John write?
और यूहन्ना ने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं.
He wrote the Gospel of John.
सुसमाचार लिखा यूहन्ना का.
Look in John chapter 11.
यूहन्ना उसके 11 अध्याय में देख लीजिए.
And I want to give you an assignment.
मैं आपको एक काम देना चाहता हूँ.
A principle of interpretation.
व्याख्या का सिद्धांत.
Let scripture interpret scripture.
वचन को अनुमति दीजिए कि वचन को व्याख्या करें.
Let an author interpret himself.
एक लेखक को स्वयं को व्याख्या करने दीजिए.
Chapter 11. Verse
47.
The Pharisees and the chief priests got together and had a meeting.
महायाजक और फरीसियों की महासभा हुई.
They said, "What are we going to do? This man's performing many miracles."
हम क्या करें? ये आदमी तो बहुत चिन्ह दिखाता है.
If we let him go on, all men will believe in him.
अगर हम इसको ऐसा करने देंगे तो सारे लोग उस पर विश्वास करेंगे.
And the Romans will come and take away our nation.
तो रोमी लोग आकर के हमारे देश को ले जाएंगे.
Now notice verse 49.
और 49वें पद को देखिए.
One of them, Caiaphas, a high priest, said to them, "You know nothing at all."
और कैफस जो कि महायाजक था उसने कहा, तुम तो कुछ भी नहीं जानते हो.
Do you not take into account that it's expedient for you that one man should die for the people and that the whole nation should not perish?
क्या तुम इस बात को नहीं समझते कि उस समय एक व्यक्ति हमारे समस्त लोग मरे इसके अपेक्षा की समस्त जाति नष्ट हो जाए.
And then John steps in and writes two verses to interpret what Caiaphas meant.
और फिर उसके बाद यूहन्ना ने 51-52 पद में आकर के क्या किया, जो कुछ भी कैफा ने कहा है उसकी व्याख्या की.
Verse 51 and 52.
51-52 पद.
I want to give you an assignment.
मैं आपको एक कार्य देना चाहता हूँ.
I want you to take 3 or 4 minutes.
मैं चाहता हूँ कि आप 3 या 4 मिनट लीजिए.
And I want you to get out a piece of paper.
और आप एक पेपर निकाल लीजिए.
And I want you to let John interpret himself.
और मैं चाहता हूँ कि आप यूहन्ना को स्वयं अपने आप की व्याख्या
करें. And I want you to answer this question.
और आप इस प्रश्न का उत्तर लिखिए.
Verse 51 and 52.
51 और 52 पद.
What is their relationship to 1 John 2:2?
उसका पहला यूहन्ना 2:2 से क्या संबंध है. यहाँ पे 11वें अध्याय में 51 और 52 पद हैं. इनका पहला यूहन्ना के दूसरे अध्याय के दूसरे पद से क्या संबंध है. ठीक है आपको ये ढूंढ करके बताना हमको
यू टेक 3 or 4 minutes
आप 3 या 4 मिनट लीजिए
Let me ask you something, brother. What does your Bible say in Romans 4 about this word that's repeated again and again? Verse 3. They believed God, it was reckoned or credited to him as righteous. Verse 4.
Counted.
Yeah. Verse 4. Credited as a favor.
Understood as considered.
Alright.
This is one. There's one another component for being justified and righteous. It's the same word.
Right.
So in Hindi, in English, at least it's helpful to use two different words.
Right.
Okay. Righteousness, justification, being justified. But in Hindi, it's the same word that keeps coming again.
Well, obviously in Greek, it's from the same root as well.
So,
but it has. Let me get some more handed and figure that out.
So in propitiation, you didn't talk about satisfying God's wrath?
No, see, we got so many when we talk about satisfying justice, that's what we're talking about. So you can mention that again. So we're just surveying here. Covering satisfaction, yes, is toward justice, which it wrath is an expression of justice.
Mm-hmm.
So yes, we'll mention that.
And the word that is used here is basically repentance, or it's the same word for repentance, it's the same word for propitiation that is being used. It's very confusing. It just leaves it like that.
Uh-huh.
So people, all they think is, oh, our sins are being forgiven. That's it. There's nothing more than that.
That's interesting. Well, let's stop.
आपका समय पूरा हुआ.
Now there are several different interpretations of 1 John 2:2.
और पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके दूसरे पद के कई व्याख्या हैं कई समझने के तरीके हैं.
One interpretation is he died not just for all our sins, that means all believers, but also the rest of the world unbelievers.
और एक लोगों को यह मानना है कि यीशु मसीह जब मरे थे तो उनके खून ने लहू ने न सिर्फ विश्वासियों के पापों के लिए लेकिन संसार के प्रत्येक जन के पापों के लिए मरे
And that is a possible interpretation.
और वो संभव है कि उसका ये अर्थ है
And many people hold to that interpretation.
और बहुत सारे लोग उस बात को मानते हैं
I'm suggesting another interpretation.
और मैं आपके सामने एक दूसरा व्याख्या रख रहा हूँ
Letting John interpret himself.
यूहन्ना स्वयं यूहन्ना को व्याख्यित करने दीजिए
So if you look at verse 52 in John
तो अगर आप यूहन्ना उसके यूहन्ना उसके 52 उस पद में पढ़ें
एंड कंपेयर इट टू चैप्टर 2 वर्स 2 इन 1 जॉन
और उसके पहले यूहन्ना उसके दूसरा अध्याय उसके दूसरे पद को पढ़ें
व्हाट इज अनदर पॉसिबल इंटरप्रिटेशन
तो और क्या संभव हो सकता है उसके अर्थ का
समवन स्टैंड अप एंड टेल अस
कोई खड़ा होकर बताएगा इस बात को For those who believe.
That's too general. That's right.
सही कह रहे हैं
You need to be more specific.
कौन सी जाति सारे लोग believers.
Or let me ask the first, what nation is he talking about in John chapter 11 verse 52?
अच्छा यूहन्ना के 11 अध्याय के 52 पद में किस देश किस जाति की बात कर रहा है? इज़राइलियों? تتر بتر لوگ کون سے ہیں, کس جاتی کے لوگ, کس یہودی, Jewish people,
the Jewish nation, that's what Caiaphas said.
جو کیفا ہے, کیفا تو وہاں پہ اسی بات کر رہا ہے, کیفا یہودی لوگ کی بات کر رہا ہے وہاں پہ.
So Jesus would not only die for the Jews,
کنتو یہ سے کیول یہودیوں کے تو نہیں مرے,
but he would die for Gentiles.
اور وہ تو غیر یہودیوں کے لیے بھی مرے,
scattered all over the world.
سارے سمپورن سنسار میں چتر بتر جو پھیلے ہوئے ہیں,
the children of God scattered all over the world.
پرمیشر کی سنتان جو سارے سنسار میں پھیلے ہوئے ہیں.
That's another possible interpretation.
یہ ایک اور سمبھو ہے ویاخیا کا.
You need to study the word of God.
آپ کو پرمیشر کے وچن کو پڑھنا ہے.
You need to let scripture interpret scripture.
اور آپ وچن کو ہی وچن کا ویاخیا کرنے دیجیے.
That's why you must be very familiar with the word of God.
اسی لیے آپ کو پرمیشر کے وچن سے جان پہچان ہونی چاہیے.
You let John interpret himself.
تو آپ یوحنا کو سوئم یوحنا کا ویاخیا کرنے دیجیے.
There are two possible interpretations.
دو سمبھو ویاخیا ہیں اس کی.
Most people hold the other interpretation.
زیادہ تر لوگ اس دوسرا ویاخیا کو پکڑتے ہیں.
You need to study the word of God and determine what you believe.
اور آپ کو وچن کو پڑھنا ہے اور آپ کو یہ نرنے کرنا ہے کہ آپ کیا وشواس کرتے ہیں.
Not because somebody else tells you.
اس لیے نہیں کیونکہ کسی اور نے آپ سے کہا تھا.
But because you understand and study the word of God.
کیونکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں پرمیشور کے وچن.
This is a principle of interpretation.
یہ ایک ویاخیا کا سدھانت ہے.
Let scripture interpret scripture.
وچن کو ہی وچن کی ویاخیا.
Let the author interpret himself.
جو لیکھک ہے اس کو سوئم کی ویاخیا کرنے.
Do you see what I'm trying to say?
آپ دیکھ رہے ہیں میں کرنا کہنا کیا چاہ رہا ہوں.
We're talking about propitiation.
ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ propitiation کی.
Not limited to the Jews.
کیول یہودیوں تک وہ اس کا سیما نہیں ہے, سیمت ہے.
But for all people.
لیکن وہ سارے لوگوں کے لیے.
You and I are Gentiles.
ہم اور آپ جو ہیں غیر یہودی ہیں.
We are scattered all over the world.
ہم سارے سنسار میں پھیلے ہوئے ہیں.
And he gave his life for us as well.
اور اس نے اپنے جیون کو ہمارے لیے بھی دے دیا.
What is propitiation?
جس شبد propitiation کی ہم نے پہلے بات,
a covering of sin,
پاپوں کا ڈھاکا جانا,
to satisfy justice,
پرمیشر کے نیائے کو سنتشت کرنا,
and what is the expression of God's justice,
اور پرمیشر کا جو نیائے ہے اس کی ابھیویکتی کیا ہے,
his wrath,
اس کا کروھ,
and what is wrath,
اور اس کا کوپ کیا ہے,
his righteous anger,
اس کا دھرمی کروھ,
his righteous anger towards sin,
پاپ کے پرتی دھرمی کروھ.
And Paul says that God has delivered us from the wrath of God through Christ.
اور پولس کہتا ہے کہ پرمیشر نے ہمیں چھٹکارا دیا ہے اس کے کروھ سے مسیح کے دوارا.
And we must be willing to preach the justice of God.
اور ہمیں پرمیشر کے جو نیائے ہے اس کے بارے میں پرچار کرنے کے لیے تیار رہنا ہے.
Now listen carefully.
دھیان سے سنیے.
If men do not understand the justice of God,
اگر لوگ پرمیشر کے نیائے کے بارے میں نہیں سمجھیں گے,
they will not appreciate the love of God.
تو پرمیشر کے پریم کے بارے میں خوش نہیں ہو سکتے.
If men do not understand the wrath of God,
اگر لوگ پرمیشر کے کروھ کے بارے میں نہیں سمجھیں گے,
they will not appreciate the grace of God.
تو پرمیشر کے جو انگرہ ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے.
Now most preaching is like this.
اور بہت سارا پرچار اس طرح کا ہوتا ہے.
God loves you.
پرمیشر آپ سے پریم کرتا ہے.
God loves you.
پرمیشر آپ سے پریم کرتا ہے.
God loves you.
پرمیشر آپ سے پریم کرتا ہے.
And he gave his son.
اور اس نے اپنا
پتر دیا. The Bible says God so loved the world.
بائبل کہتی ہے کہ پرمیشر نے جگت سے اتنا پریم کیا.
And he does love the world.
اور ہاں وہ صحیح کہ پرمیشر
سے پریم کرتا ہے.
اور اس نے اپنا پتر دے بھی دیا.
But there's other attributes of God.
لیکن پرمیشر کے اور بھی کئی گن ہیں.
And when Paul wondered, who were the clearest preachers of the gospel in the Bible?
اور جو وچن ہے اس میں سسمچار کے جو سب سے سپشٹ جو پرچارک ہیں وہ کون ہیں؟
We follow their footsteps.
ہم ان کے پیروں پہ چلتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں.
And we hear them preaching.
اور ہم ان کو سنتے ہیں پرچار کرتے ہوئے.
In Jerusalem.
یروشلم میں.
In Judea.
یہودیا میں.
In Samaria.
اور سامریا میں.
And to Asia.
اور ایشیا میں.
Who were they?
کون لوگ تھے لوگ جو سپشٹ پرچار کرتے تھے؟
The apostles.
پریرت لوگ.
We read their sermons.
ہم ان کے سندیشوں کو پڑھتے ہیں.
Now let me ask you a question.
میں آپ سے ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں.
In the book of Acts.
پیتر کے کام کی پستک میں.
And the apostles preaching.
اور پریرت لوگ پرچار کر رہے ہیں.
How many times do you think they mentioned the love of God?
انہوں نے کتنی بار پرمیشر کے پریم کے بارے میں بات کی؟
20 times.
20 بار.
10 times.
10 بار.
5 times.
5 بار.
3.
तीन बार
वन
एक बार
How many times the apostles mentioned the love of God in their preaching in the book of Acts?
प्रेरितों के काम में प्रेरितों ने जब अपने प्रचार में परमेश्वर के प्रेम के बारे में कितनी बार वर्णन किया है? शून्य बटे अंडा.
They never mentioned it.
उन्होंने कभी इसका वर्णन नहीं किया.
Does that mean that they didn't think God loves sinners?
क्या इसका मतलब ये है कि वो ये नहीं मानते थे कि परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है?
Of course not.
बिल्कुल वो मानते थे ऐसा नहीं है. हाँ बिल्कुल.
What does it mean?
लेकिन इसका मतलब क्या हुआ?
They didn't think the love of God was the first thing a lost man needed to consider.
लेकिन वो ये समझते थे कि जो खोया हुआ पापी व्यक्ति है उसको परमेश्वर के प्रेम के बारे में सबसे पहली वस्तु नहीं है जो उसको समझना है.
And when Paul wrote the book of Romans.
और जब पौलुस ने रोमियों की पुस्तक को लिखा.
When's the first time in the book of Romans he mentions the word love?
रोमियों की पुस्तक में सबसे पहली बार प्रेम शब्द का उसने कब वर्णन किया है?
What chapter and verse?
कौन से अध्याय और कौन सा पद?
You should know your Bible.
आपको अपनी बाइबल मालूम होनी चाहिए.
Don't look.
चोरी मत करिए.
When's the first time he mentioned love?
सबसे पहली बार उसने प्रेम को कब वर्णन किया?
Chapter 1.
पहला अध्याय.
2.
दूसरा अध्याय.
3.
तीसरा अध्याय.
4.
चौथा अध्याय.
5.
पांचवा अध्याय.
What verse?
कौन सा पद?
Verse 8.
आठवा अध्याय. आठवा पद. पांचवा अध्याय.
God demonstrated His love.
परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया.
And while we were yet sinners.
और जब हम स्वयं पापी ही थे.
Christ died for us.
मसीह हमारे लिए मर गया.
What was Paul doing for 4 chapters?
पहले चार अध्याय तक पौलुस क्या कर रहा था?
He was trying to show that both Jew and Greek were all under sin.
वो ये बताना चाह रहा था कि यहूदी और यूनानी सब पाप के अधीन हैं.
That both Jew and Greek were condemned by God.
और कि दोनों यहूदी और यूनानी परमेश्वर के द्वारा दोषी हैं.
And both Jew and Greek had to be justified the same way.
और दोनों यहूदी और यूनानी मतलब संसार के सारे लोगों को उसी एक ही तरह से परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाना था.
What are we saying?
हम कहना क्या चाह रहे हैं आपसे?
If we don't understand the justice of God,
अगर हम परमेश्वर के न्याय को नहीं समझेंगे,
if we don't understand the holiness of God,
अगर हम परमेश्वर के पवित्रता को नहीं समझेंगे,
if we don't understand the requirements of God,
अगर हम परमेश्वर की जो आवश्यकता है जो मांगे हैं उसको हम नहीं समझेंगे,
and if we don't preach at times the law of God,
अगर हम समय ब समय परमेश्वर की व्यवस्था का प्रचार नहीं करेंगे,
now God uses different things to convict people,
तो परमेश्वर जो है अलग लोगों को अलग अलग तरीके से कार्य करने के लिए इस्तेमाल करता है.
Two primary things he uses is this.
दो मुख्य चीजें हैं जो परमेश्वर इस्तेमाल करता है लोगों को कार्य करने के लिए वो ये हैं.
The law of God.
परमेश्वर की व्यवस्था.
And the cross of Christ.
मसीह का क्रूस.
The law of God.
परमेश्वर की व्यवस्था.
And the cross of Christ.
मसीह का क्रूस.
When men understand the law of God.
जब लोग परमेश्वर की व्यवस्था या नियमों को समझ जाते हैं.
They are under that law.
कि वो लोग उस व्यवस्था उस नियम के अधीन
हैं. And that law condemns them.
और फिर वो जो व्यवस्था है वो उनको दोषी ठहराता है.
And that they are sinners.
और वो ये जान जाते कि वो पापी हैं.
And they have a need.
और अब उनकी ये जरूरत है या आवश्यकता
है. Then they see the cross of Christ.
और तब वो मसीह के क्रूस को देखते हैं.
The cross is an expression of God's justice and His love.
और ये क्रूस है ये परमेश्वर के प्रेम परमेश्वर के न्याय की और परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति है.
The cross of Christ is grounded in the law of God.
और परमेश्वर का जो मसीह का जो क्रूस है वो परमेश्वर के व्यवस्था में आधारित है बना हुआ है.
It is grounded in the justice of God.
और उस परमेश्वर के न्याय पर आधारित है क्रूस.
And the cross, God displays His justice and His love.
और क्रूस पे परमेश्वर ने अपने न्याय को और अपने प्रेम को प्रदर्शित कर दिया है.
So when we talk about propitiation,
और जब हमने उस शब्द के बारे में बात की propitiation,
we're talking about the covering of sin. That's what it means in the Old Testament to cover sin.
हमने बात की पाप के ढांपे जाने की बारे में यही है पुराने नियम में ढांपा जाना.
It means to satisfy justice.
इसका ये अर्थ है कि उस न्याय को संतुष्ट करना.
And how was God's justice satisfied?
और परमेश्वर का न्याय कैसे संतुष्ट हुआ?
It was poured out upon a substitute.
और वो किसी और की जगह किसी और के ऊपर बदले में उसके ऊपर उंडेल दिया गया.
And Christ paid the penalty.
और मसीह ने वो दंड वो कीमत चुका दी.
And it removed our guilt.
और जो हमारा जो दोष था वो हमसे हट गया.
That is what the word means.
और ये जो शब्द है जिसको हम बार बार इस्तेमाल करें तो याद कर लिया आप लोग propitiation का ये मतलब.
Offering that does three things.
एक ऐसा बलिदान ऐसा चढ़ावा जो तीन चीजें करता है.
It covers.
वो ढांकता है,
satisfies,
संतुष्ट करता है,
remove,
हटाता है.
That's propitiation.
यही है इस शब्द का अर्थ, propitiation का.
You understand what we're saying?
अब आप समझे हम कहना क्या चाह रहे हैं?
Very quickly, the obedience of Christ also accomplished a reconciliation.
और मसीह के आज्ञाकारिता ने एक और कार्य किया, वो है परमेश्वर से मिलन, मेल मिलाप.
Let's look at several verses.
आइए हम कई पदों को देख लें.
Very quickly.
बहुत जल्दी से.
Chapter Romans 5.
Romans का पांचवा अध्याय.
And verse 10.
और दसवां पद.
Very familiar verse.
हम जानते हैं इसको बहुत आसानी.
Look at the verse.
Which one is that?
Chapter 5, verse 10.
पांचवा अध्याय उसका दसवां पद.
While we were enemies of God, we were reconciled to Him.
जब हम परमेश्वर के शत्रु ही थे, तब हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ.
How was this accomplished?
लेकिन ये कैसे हुआ?
Through the death of His Son.
उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा.
And having been reconciled, we shall be saved by His life.
और उसके मेल मिलाप होने के द्वारा हम उसके जीवन के द्वारा ही उद्धार पाएंगे, बचाए जाएंगे.
Talking about His resurrected life.
हम उसके जीवित जी उठने वाले पुनरुत्थित जीवन के बारे में बात कर रहे हैं.
Look in 2 Corinthians.
दूसरा कुरिन्थियों में देख लीजिए.
We're talking about reconciliation.
हम यहाँ पे भी मेल मिलाप की बात कर रहे हैं.
You must study this in more detail.
आपको इसको और ध्यान से विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है.
And chapter 5 and verse 18.
पांचवा अध्याय और उसका 18 पद.
These things are from God who reconciled us to Himself.
और ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के साथ हमें हमारा मेल मिलाप करा दिया.
And He gave us this ministry of reconciliation.
और उसने हमें ये सेवा दी है मेल मिलाप की.
We cannot reconcile people to God.
हम लोगों को परमेश्वर से उनका मेल मिलाप नहीं करा सकते.
Our ministry is to preach the means of reconciliation.
और हमारी सेवकाई ये है कि मेल मिलाप के साधन के बारे में हम प्रचार करें.
And how was God doing this?
और परमेश्वर ने कैसे किया है ये?
Verse 19. It was in Jesus Christ.
वो यीशु मसीह में होकर के.
And He reconciled the world to Himself.
और उसने जगत का मेल मिलाप अपने किया, स्वयं से किया.
We didn't reconcile ourselves to God.
हमने अपना मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं किया.
He did the work.
उसने कार्य किया.
And He committed to us not counting their transgressions against them.
और उसने जो है उनके जो अपराध थे उनके विरोध में गिना नहीं.
He said they're no longer guilty for their sin.
और इसमें ये कहते कि अब वो उनके दोषों के लिए, अपराधों के लिए बिल्कुल दोषी नहीं है.
One more verse.
एक और पद.
Colossians. Chapter 1.
पहला अध्याय.
Look at verse 19 and 20.
1920 पर, कुलुसियों पहला अध्याय 1920 पर.
It's talking about the person and work of Christ.
ये मसीह के व्यक्तित्व और उसके कार्य की बात कर रहा है.
Verse 19.
19 पर.
It was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him.
क्योंकि ये पिता को यही भाया कि समस्त परिपूर्णता में उसी की वास करे.
And through Him to reconcile all things to Himself.
और उसी के द्वारा सारी वस्तुओं को अपने से मेल करा ले.
How did He do this?
कैसे किया उसने?
He made peace through the blood of His cross.
उसने क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा शांति स्थापित किया.
Verse 21.
21 पर.
We were former alienated and hostile in mind.
तुम पहले तो अलग किए हुए थे और मन में बैरी थे.
Verse 22.
22 पर.
He reconciled you through Christ's fleshly body through death.
फिर उसने अपने मृत्यु से तुमसे मेल करा लिया.
What is the meaning of reconciliation?
मेल मिलाप का मतलब क्या हुआ?
Look in chapter 2, verse 14.
14 पद.
He canceled out the certificate of death.
दूसरा अध्याय 14 पद.
These were decrees against us that was hostile to us.
और विधियों का वो अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध था मिटा डाला.
What is the certificate of death?
और ये जो मृत्यु का ये जो अभिलेख है ये क्या है? चिट्ठा है. ये क्या है ये चिट्ठा?
We broke the law.
हमने व्यवस्था को तोड़ा. हमने नियमों को.
We were obligated to make a payment.
और इसीलिए हमारे पास ये हमारे कर्तव्य बनता था कि हम उस कीमत को चुकाएं.
We had an official responsibility to make a payment.
हमारे पर एक ये आधिकारिक ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम उसका कीमत चुकाएं.
God presented to all humanity a debt, a payment that they owed.
और परमेश्वर ने जो संसार मानवता के सामने एक ऐसा पत्र रखा जो ये बताने के लिए कि हमें उसे कुछ चुकाना है.
And on it is the proof of a broken law.
और उसपे उस पत्र में क्या लिखा है, हमने जो नियम तोड़े हैं उसका वर्णन लिखा उसपे.
And God the judge has said guilty.
और परमेश्वर जो न्यायी है उसने क्या वर्णन किया है कि हम दोषी हैं.
But Christ took our legal debt upon himself.
लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारा कानूनी जो कर्ज था वो अपने ऊपर ले लिया.
And he nailed it on the cross.
और फिर उसको लेने के बाद क्रूस पे उसको ठोक दिया.
And you know the illustration.
आपको मालूम है ना ये उदाहरण.
Many times when they crucified a criminal.
कई बार जब वो लोग जिस किसी क्रिमिनल को किसी जुर्मी को
they wrote his certificate of guilt.
उसको क्रूस पे चढ़ाते थे तो जो कुछ भी उसने गलत काम किया है उसको क्रूस पे ठोक देते थे.
They nailed it on the cross.
और क्रूस पे लिख देते थे.
Paul says that God has nailed our certificate of debt on the cross of Christ.
और जिस तरह से उस समय लोगों के साथ किया जाता था पॉलस ने कहा कि परमेश्वर ने हमारे उस जुर्म के पत्री को क्रूस पे ठोक दिया है.
And when the blood came down the cross,
और जब क्रूस से खून नीचे आया
it covered that certificate of debt.
और वो जो हमारे जो कर्ज का जो पत्र था उसको उसने ढांक दिया.
And it wiped it clean.
और उसने उसको साफ कर दिया.
What is reconciliation?
मेल मिलाप करने का मतलब क्या हुआ?
Two things.
दो चीज.
The removal of the offense.
और जो 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 गलत काम किया है उसका हटाया जाना.
The removal of the barrier.
और जो बीच में जो रुकावट है उसको हटाया जाना.
And the restoration of a relationship.
और जो एक रिश्ता है उसको साथ में वापस पुनः स्थापित कर देना.
What is reconciliation?
मेल मिलाप मतलब क्या हुआ?
Removal.
हटाया जाना.
And restoration.
और फिर वापस स्थापित कर देना.
What is redemption?
छुटकारा क्या है?
Payment of a price.
कीमत को चुकाया जाना.
To free from bondage.
और बंधुआई से छुड़ाना.
To make your own possession.
और स्वयं के स्वामित्व में या ले आना.
What is propitiation?
और propitiation का मतलब प्रायश्चित का मतलब
to
क्या
cover
है?
Sin.
पाप को ढांपना.
To satisfy wrath.
परमेश्वर के क्रोध को या न्याय को संतुष्ट करना.
And to remove guilt.
और जो हमारा जो दोष है उसको हटा देना.
What is reconciliation?
मेल मिलाप क्या है?
To remove the certificate of debt.
जो कर्ज का जो पत्र है उसको हटा देना.
And to restore the relationship.
और मसीह के परमेश्वर के साथ रिश्ते को स्थापित कर देना, पुनः स्थापित कर देना.
We didn't initiate it.
और ये सब हमने नहीं किया.
God reconciled us to himself.
परमेश्वर ने स्वयं से हमें मेल मिलाप कराया.
And we're talking about the accomplishments of Christ.
और ये सारे काम जिनके बारे में बात करी मसीह के कारण है जो उन्होंने किया.
It's broad definition.
ये एक बड़ी परिभाषा है.
Obedience.
और ये सब उस परिभाषा के अंतर्गत आता है.
In life
कार्यकर्ता.
And in death.
यीशु मसीह के जीवन में और यीशु मसीह के मृत्यु में.
Accomplished three things.
यीशु मसीह ने तीन चीजें की है.
Redemption.
छुटकारा.
Satisfaction.
संतुष्ट करना.
And reconciliation.
और परमेश्वर से मेल मिलाप.
And when you preach the gospel.
और जब आप सुसमाचार का प्रचार करें.
It's not enough to say Jesus died for our sin.
केवल ये कहना काफी नहीं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा.
If that's all you were supposed to preach, that would be all that's in the Bible.
अगर केवल आपको सिर्फ यही प्रचार करना होता तो बाइबल में केवल इसी चीज का वर्णन होता.
But God has explained specifically what that means.
लेकिन परमेश्वर ने खास रीति से विशेष रीति से समझाया कि उसका अर्थ क्या है.
And your responsibility is to unfold the word of God.
और आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन को खोल करके लोगों के सामने समझाएं.
To preach Jesus Christ.
कि यीशु मसीह का प्रचार करें.
His person.
उसका व्यक्तित्व.
His works.
उसके कार्य.
And his offices.
और उसके जो स्थान है.
Prophet, priest and king.
जो नबी है और राजा है और याजक है.
Your responsibility is to unfold the word of God.
और आपका काम है कि परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने खोल के रख दें.
To handle accurately the word of truth.
और उसको सही तरीके से परमेश्वर के वचन को सत्य को लोगों के सामने इस्तेमाल करें.
So this is just a very simple survey.
ये बहुत साधारण सर्वेक्षण हमने किया.
The truth of the gospel is like a great ocean.
और परमेश्वर जो सुसमाचार का जो सत्य है वो एक बड़े समुद्र के समान है.
No bottom, no sides.
उसके कोई नीचे तल नहीं है, उसके कोई किनारा नहीं है.
And we're like little children just playing in the water.
और हम छोटे बच्चों के समान है, केवल पानी में थोड़ा सा खेल रहे हैं.
But God wants us to go deeper.
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम और गहराई की
ओर जाएं. Into the knowledge of God.
परमेश्वर के ज्ञान की ओर.
The heart of Christ.
मसीह के हृदय की ओर.
The work of the Spirit.
आत्मा का कार्य.
The ministry of the cross.
और क्रूस की सेवकाई की ओर.
And be able to explain these things.
और इन चीजों का हमें लोगों को समझाना
है. And to apply these things.
और फिर लोगों पे लागू भी करना है.
And to be simple.
और साधारण होना है.
To be clear.
स्पष्ट होना है.
To be orderly.
और व्यवस्थित होना है.
And to be direct.
और फिर सीधे क्या सीधे
सीधे बात करना. And to show people in the Bible.
और फिर वो चीजें हमें बाइबल में लोगों को दिखानी है.
And teach them how to read and interpret the Bible.
और लोगों को सिखाना है कि कैसे वचन को पढ़ें और वचन का व्याख्या करें.
That is your responsibility.
ये आपकी जिम्मेदारी है.
The preacher's great privilege.
और जो प्रचारक है उसका एक बड़ा सौभाग्य
है. To preach Christ.
कि मसीह का प्रचार करे.
His work.
उसके कार्य.
His glory.
उसकी महिमा.
His sacrifice.
उसका बलिदान.
His atonement.
उसका हमारे
His righteousness.
उसका धर्म.
His obedience.
उसका आगे
का. His character.
उसका चरित्र.
And that will take a lifetime.
और ये पूरा जीवन का कार्य है.
And you must study.
और इसीलिए आपको अध्ययन करना है.
And you must pray.
इसीलिए आपको प्रार्थना करना है.
And after we take a break.
और हम अभी एक ब्रेक लेंगे.
We'll answer that question.
फिर हम उस प्रश्न पे आएंगे.
Well, let's pray.
आइए हम लोग प्रार्थना करें.